हम कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार इसके तीसरे अध्याय पर चर्चा करेंगे। कृष्ण प्रेम का अभ्यास है ना, आप सब पढ़ के आए हैं इसको। कृष्ण प्रेम का अभ्यास करने में पांच कारक हैं। अगर हम बात करते हैं कि कृष्ण भावना, कृष्ण प्रेम का अभ्यास करना चाहिए, तो पहला कारक क्या है कि पहला कारक है, इसको इधर आगे ले, हरे कृष्णा। पहला कारक है ये जानना कि हम कौन है, है ना। पहले हम पांच कारक बोल देते हैं, उसके बाद फिर उनके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। पहला कारक है कि ये जानना कि हम कौन है। दूसरा कारक क्या है, भगवान कौन है। और तीसरा कारक है भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है। और चौथा कारक है उस संबंध को पुनर्जागृत करने की इच्छा होना। और पांचवा कारक है कि उस इच्छा को पूरी करने के लिए संकल्प या प्रेरणा का होना। ये पांच कारक होंगे तो हम कृष्ण प्रेम का अभ्यास कर सकते हैं, है ना। आप प्रभु आगे आ गए। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि हम कौन हैं, तो मतलब हम कितना ही बढ़िया काम कर लें वो दिशाहीन होगा। जो भौतिक जगत में हम देखते हैं, जो लोग अपने आप को बहुत परोपकारी मानते हैं, वो भी स्कूल कॉलेज खुलवा देंगे, प्याऊ बनवा देंगे, कुएं खुदवा दिए, है ना, तो कुछ हॉस्पिटल्स बनवा दिए। ये बात अलग है, हॉस्पिटल का लाइसेंस लेते हैं चैरिटेबल के नाम पे, फिर वो चैरिटेबल के लिए एक कमरा छोड़ के बाकी पूरा हॉस्पिटल में लोगों का शोषण करते हैं वो, है ना। सो लोग ये सोचते हैं कि इस तरह के परोपकारी कार्य करने से बहुत लोगों का भला हो रहा है। ये कोई समझ नहीं पा रहा कि ये जो परोपकारी कार्य हैं अच्छी बात है, लेकिन ये सारे कार्य देह के स्तर पर स्थित हैं, है ना, आत्मा के स्तर पर स्थित नहीं है। और इस अध्याय में प्रभुपाद बात भी कर रहे हैं कि जितनी भी शिक्षाएं हैं स्कूल कॉलेजों में इंस्टीट्यूट्स में, वो सारी शिक्षाएं शरीर को बढ़ावा दे रही हैं, आत्मा के लिए कोई भी बात नहीं कर रहा। तो ये सारी जड़ विद्या है, प्रभुपाद कह रहे हैं जड़ विद्या है सारी। बहुत बड़े बड़े कॉलेज वगैरह हैं, लेकिन देह जड़ विद्या रहे हैं वो, आत्मा के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, है ना। जब तक हम ये जानने लेंगे कि हम शरीर हैं कि आत्मा, तब तक हम कोई भी कार्य ढंग से नहीं कर सकते। और दूसरा कार्य है, दूसरा जो कारक है वो है कि भगवान कौन है। तो एक बार हमने ये समझ लिया कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो जिस प्रकार इस शरीर का एक पिता है, उसी प्रकार से आत्मा का भी एक पिता है, है ना। और उस पिता को हम जानते हैं, भगवान कह रहे हैं मम्मे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, कि जितने भी जीव हैं, मनुष्य नहीं, जितने भी जीव हैं वो सब मेरे अंश हैं। हाँ, ये हमने जान लिया कि भगवान हैं और हम हैं। तो अब बात होती है कि आपस में संबंध क्या है। तो जैसे हमने बात की कि भगवान के साथ संबंध है पिता और पुत्र का, और हमारे शास्त्रों में बताया गया कि भगवान के साथ हमारा संबंध शाश्वत है। ऐसा नहीं है कि हम कोई नया संबंध स्थापित करने वाले हैं, संबंध पहले से मौजूद है, अभी विस्मृति हो गई है, भूल गए हैं, अभी एक्सीडेंट हुआ, दिमाग पे चोट लगी, पिछला भूल गए सब, है ना। अभी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम कहाँ से आए थे, कौन हैं हम, है ना। फिल्मों में भी दिखाते हैं एकदम टक्कर लगते हैं, बोलता कौन हो तुम। सो अभी हम एमनेशिया बोलते हैं इसको, सब भूल गए, पुराना जो भी था याददाश्त हमारी गायब हो गई। हाँ, सो वो याददाश्त मतलब सारा जो हमारा प्रयास है, हमारा प्रयास उस याददाश्त को वापस लाने का है, उस संबंध के बारे में अपने याददाश्त वापस लानी है कि भगवान से हमारा क्या संबंध है। और शास्त्रों में बताया गया है भगवान से हमारे पांच तरह का संबंध होता है ना। कौन कौन से पांच संबंध है? शांत भाव में, दास्य भाव में, साख्य में, वात्सल्य में और माधुर्य में। सो इन पांचों रसों में या भावों में हम भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं, है ना। सो इस संबंध को स्थापित करने की इच्छा कहाँ से आएगी? इस संबंध को स्थापित करने की इच्छा आएगी जब हम ये समझ लेंगे कि ये भौतिक जगत जो है दुखालयम और अशाश्वतम है। यहाँ पर कोई भी चीज़ शाश्वत नहीं है, सनातन नहीं है, स्थायी नहीं है। रिश्ते बदल रहे हैं, परिवेश बदल रहा है, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी लगातार बदल रहा है। और इस अध्याय में प्रभुपाद चर्चा कर रहे हैं कि पहले जीव मटर के दाने के जितना होता है, फिर नौ द्वार विकसित होते हैं, है ना। और फिर जब जीव जो है वो बाहर के वातावरण में अकेले रहने योग्य हो जाता है, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी सहायता के, तो माँ के गर्भ से बाहर आ जाता है वो, है ना। आप सबने पढ़ा है ना। सो जब ये जान ले, और भगवान कृष्ण सबसे पहले अर्जुन को यही शिक्षा दे रहे हैं भगवद गीता में, हाँ, देहि नोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिस धीरस्तत्र न मुह्यति, कि जो जीव है वो शरीर में बार बार जो है देहांतर कर रहा है, बार बार एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रहा है। अभी बच्चे के शरीर में था, जवान शरीर में आ गया, बुढ़ापे में आ गया, और फिर एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाएगा, उसको देहांतर कहते हैं और लोग उसको मृत्यु के नाम से जानते हैं। तो जिस तरह से अभी बचपन का शरीर नहीं है लेकिन हम शोक नहीं कर रहे हैं, उसी प्रकार ये शरीर को छोड़ कर दूसरे शरीर में जाने पर शोक नहीं करना चाहिए। अगर बूढ़ा जर्जर शरीर छोड़कर हमें एक नया बहुत ही सुंदर पूरी बैटरी चार्ज वाला शरीर मिलेगा तो क्या प्रॉब्लम है? उसमें शोक करने के लिए क्या कारण है? उसके लिए शोक तो तब करना चाहिए जब हमें ये पता हो कि हमारे ऐसे काम हैं, ऐसे काम किए हमने गलत, कि अभी तो एक अच्छा शरीर मिला था लेकिन जो अगला शरीर मिलने वाला है बहुत ही खराब मिलेगा, निम्न योनियों में मिलेगा। अब प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर हमने जो भगवान ने हमें जिम्मेदारी दी, जिस प्रकार सरकारी नौकरी हो, अगर अच्छी जिम्मेदारी वाला पद है, अगर उस पद का निर्वाह नहीं किया तो वो पद छीन लिया जाता है, उसी प्रकार अगर मनुष्य शरीर मिलने पर भी हमने मनुष्य के लिए जो उचित जो कार्य है वो अगर हमने नहीं किए तो वो भगवान हमसे मनुष्य योनि रूपी जो सुविधा है वो छीन लेंगे और बोलेंगे तुम पशुओं जैसे रहना चाह रहे हो ना, आहार निद्रा भय मैथुनम चा, तुम चार प्रकार के कार्यों में लिप्त रहना चाहते हो, खाना पीना सोना मैथुन करना और सुरक्षा करना, तो कर लो भैया, उसके लिए मनुष्य जीवन क्या करना है, पशु योनि में चले जाओ जहाँ पर कि वो सुविधाएं उतनी ही मात्रा में उपलब्ध है। जिस प्रकार कबूतर है वो दिन में कई बार सेक्स करता है वो, हाँ, और प्रभुपाद कह रहे हैं कि अनलिमिटेड, उसको असीमित शक्ति दी हुई है भगवान ने सेक्स करने की। तो अगर हम, हमारा सेक्स के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान हुआ तो भगवान कबूतर कबूतर बना देंगे, करते रहो भैया, नहीं। सो जो जिम्मेदारी वाला पद है वो तो भगवान छीन लेंगे। तो प्रभुपाद इस पूरे अध्याय में बात कर रहे हैं कि कर्म का क्या सिद्धांत है, क्या नियम है, क्या हमने व्यवहार किया तो क्या भोगना पड़ेगा। सो ये इच्छा जो भगवान से संबंध पुनः जागृत करने की जो इच्छा है वो जागृत होगी जब हम जान लेंगे कि संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है, इससे बाहर निकल के भगवान का धाम, वैकुंठा धाम, वो सभी सुविधाओं से पूर्ण है और स्थायी सुख वहाँ पर उपलब्ध है। जब हम ये जान लेंगे तो इससे हमारे उस धाम में जाने की इच्छा हमारी उत्पन्न हो जाएगी। तो उस इच्छा को पूरी करने की प्रेरणा या संकल्प वो शक्ति कहाँ से मिलेगी? वो शक्ति मिलेगी हमें भक्तों के संग के अंदर। अगर भक्तों का संग नहीं रहेगा, कई बार हम देखते हैं नए लोग कुछ आते हैं और कीर्तन में बहुत ज़ोर ज़ोर से नाचते हैं, है ना, बाद में गायब हो जाते हैं। तो और बहुत अच्छा लगा उनको कीर्तन में नाचना और उससे उनको बहुत सुकृति भी मिलेगी उनको, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन वो एक लंबे समय तक भगवान के प्रति उस भाव को जागृत नहीं रख पाए, उस भाव को बनाए नहीं रख पाए। क्यों? क्योंकि उनके आसपास जो भक्त थे उन्होंने उस भक्तों के महत्व को नहीं समझा, उनका संग नहीं लिया, है ना। तो जब तक ये पांच कारक हम नहीं समझ लेंगे तब तक हम जो कृष्ण प्रेम का अभ्यास है वो हो सकता है हम शुरू कर भी लें, लेकिन अगर ये पांच कारक हमने अच्छे से नहीं समझे तो उसको हम लंबे समय तक बनाए नहीं रख पाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई एक कारक ही महत्वपूर्ण है, सारे कारक महत्वपूर्ण हैं और एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, ठीक है।